नमस्कार, मैं रविश कुमार। पेट्रोल और डीजल के दाम 10 दिनों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए लीटर से अधिक का हो गया है। अनूपपुर शहर में तो सामान्य पेट्रोल भी 100 रुपए से ज्यादा का हो गया है। भारत में अब ऐसे कई शहर हैं जहां पेट्रोल 98 से लेकर 100 रुपए लीटर बिक रहा है। उपभोक्ता को समझ नहीं आ रहा कि ये दाम अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बढ़ रहे हैं या उन कारणों से जिसका पता नहीं है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से हर दिन लोगों की कमाई भी घटती जा रही है। 2017, 2018 और 2020 के बाद यह चौथा मौका है जब पेट्रोल की कीमतें लंबी लंबी छलांग मार रही हैं। फ्लैशबैक से आपको बताना चाहेंगे कि आपने 2017 और 2018 में इसी तरह ज्यादा दाम दिए। एपिसोड पुराना है मगर देखने से याद आएगा कि कैसे धीरे धीरे आप अधिकतम स्तर पर एडजस्ट किए जा रहे हैं। अब तो हालत यह है कि 10 रुपए कम हो जाए, 100 से 90 आ जाए तो गोदी मीडिया कहेगा कि पेट्रोल 10 रुपए सस्ता हुआ, 90 रुपए लीटर मिल रहा है। जून 2018 में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अधिकतम स्तर पर चली गईं, काफी हाहाकार मचा। फिर 6 महीने के बाद अक्टूबर 2018 में पेट्रोल डीजल की कीमतें एक नए अधिकतम स्तर पर चली गई और अब तो सारी रिकॉर्ड ही टूटती चली जा रही है। प्राइम टाइम के हम पुराने एपिसोड में समझने का प्रयास कर रहे थे कि जून 2018 में दाम अगर अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बढ़ रहे थे तब सितंबर 2017 में क्यों बढ़ रहे थे, तब तो कच्चे तेल की कीमत काफी कम थी। इसमें महाराष्ट्र के परभणी का जिक्र आएगा, तब वहां पर मुंबई से अधिक 81 रुपए लीटर पेट्रोल था, आज वहां 100 रुपए से अधिक का है। फ्लैशबैक, 17 सितंबर 2017 को महाराष्ट्र के 21 जिलों में पेट्रोल का दाम 80 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो गया था। परभणी, नांदेड़, यवतमाल, गढ़चिरौली, भंडारा, औरंगाबाद में 80 रुपए लीटर से अधिक दाम चला गया था। परभणी में 17 सितंबर को 81 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल था और 22 मई को यानी आज 86 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर हो गया, 86 रुपए 35 पैसे। अब देखते हैं कि सितंबर 2017 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव क्या था, मई 2018 में कच्चे तेल का भाव क्या है, तुलनात्मक अध्ययन, उस हिसाब से पेट्रोल का भाव क्या है। हम परभणी को ही सैंपल मानते हैं। सितंबर 2017 में कच्चे तेल की कीमत दुनिया के बाजार में 54.52 डॉलर प्रति बैरल थी। तब परभणी में एक लीटर पेट्रोल का दाम था 81 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर। मई 2018 में कच्चे तेल की कीमत है 79 डॉलर प्रति बैरल। 22 मई को परभणी में एक लीटर पेट्रोल का दाम है 86 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर। कहने का मतलब है कि सितंबर 2017 में आज की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत 24.48 डॉलर प्रति बैरल कम थी कीमत। इसके बाद भी दाम तब भी 80 पार था और अब भी 80 पार है। फर्क यह है कि इस बार यह 90 को छूता नजर आ रहा है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम 78 डॉलर प्रति बैरल था। भारत में कभी तेल इतना महंगा नहीं हुआ। आज भी पेट्रोल 30 पैसे और डीजल की कीमतों में 26 पैसे की वृद्धि हुई है। इसी के साथ दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 76 रुपए 87 पैसे और डीजल 68 रुपए 8 पैसे हो गई है। पटना में पेट्रोल 82 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है और डीजल 72 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में 84 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है और डीजल है 72 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर, महंगा हो गया है। तो फ्लैशबैक में आपने देखा कि सितंबर 2017 में पेट्रोल के दाम 80 रुपए से लेकर 87 रुपए प्रति लीटर हो चुके थे, आपकी जेब से तब निकाल ली गई। जून 2018 में मुंबई में पेट्रोल 84 रुपए 70 पैसे लीटर हो गया था। 18 फरवरी 2021 के दिन मुंबई में पेट्रोल 25 पैसे महंगा हुआ और एक लीटर पेट्रोल का दाम 96 रुपए हो गया। चेन्नई में 23 पैसे बढ़कर 91 रुपए 68 पैसे हो गया। कोलकाता में 90 रुपए 78 पैसे लीटर मिल रहा है। दिल्ली में 89 रुपए 54 पैसे लीटर मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 26 पैसा बढ़कर 97 रुपए 56 पैसे का एक लीटर मिल रहा है। पेट्रोल को सस्ता करने का एक ही तरीका है, देश में आम चुनाव घोषित कर दिए जाएं। असम में चुनाव होने वाले हैं तो वहां पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपए की कटौती कर दी गई। इस मानवीय फैसले के बाद भी वहां पेट्रोल 86 रुपए 44 पैसे लीटर मिल रहा है। 2017 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय 19 दिनों तक दाम ही नहीं बढ़े, जबकि पूरे देश में दाम बढ़ते चले जा रहे थे। इस बार तेल के दाम बढ़ने का एक नया कारण लॉन्च हुआ है, यह कारण लगता है नया है और अगर यह कारण ना होता तो जैसे पेट्रोल डीजल के दाम इस बार बढ़ते ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में तेल और गैस सेक्टर की योजनाओं की आधारशिला रख रहे थे। इस साल वहां भी चुनाव होने वाले हैं और प्रधानमंत्री ने बताया अपने भाषण में कि क्या भारत जैसे किसी प्रतिभाशाली देश को ऊर्जा की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहना चाहिए।
इन 2019-2020 इंडिया इंपोर्टेड ओवर 85% ऑफ ऑयल एंड 53% ऑफ गैस टू मीट द डोमेस्टिक डिमांड। कैन ए डायवर्स एंड टैलेंटेड नेशन लाइक आवर्स बी सो एनर्जी इंपोर्टेंट डिपेंडेंट? आई डू नॉट वॉन्ट टू क्रिटिसाइज एनी वन बट आई वॉन्ट टू से हैड वी फोकस ऑन दिस सब्जेक्ट मच अर्लियर अवर मिडिल क्लास वुड नॉट बी बर्डन। नाउ इट इज अवर कलेक्टिव ड्यूटी टू वर्क टवर्ड्स क्लीन एंड ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी, रिड्यूस एनर्जी डिपेंडेंस। आवर गवर्नमेंट इज सेंसिटिव टू द कंसर्न्स ऑफ द मिडिल क्लास। दैट इज व्हाई इंडिया इज नाउ इंक्रीजिंग द फोकस ऑन इथेनॉल टू हेल्प फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। टूडे इंडिया इज इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। By 2030, 40% of all energy will be generated from green energy sources.
तो इस बार दाम क्या इसलिए बढ़े कि भारत जैसे प्रतिभाशाली देश ने अतीत में काम नहीं किया, इसके कारण मिडिल क्लास पर भार बढ़ा है? 70 साल में कुछ नहीं हुआ वाला ये लॉजिक नजर आता है। इस लॉजिक के बाद तो लोग 1 लीटर पेट्रोल के 200 रुपए भी दे देंगे। बहुत से देश पेट्रोल डीजल के आयात पर निर्भर करते हैं, क्या वहां भी भारत के जितना महंगा है? अतीत की सरकारों को कारण बताया जा रहा है, क्या इसलिए कि अब बार बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार का बहाना चल नहीं पा रहा? क्या जिन देशों में 80% आयात होता है वहां भारत की तरह प्रतिभाशाली लोग नहीं है?
मोदी सरकार का एक लक्ष्य है कि कुल जितना भी हमारे देश में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल प्रोसेस करके रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाया जा रहा है उसका सिर्फ 67% बाहर से आएगा और बाकी हमारे देश में ही निकाला जाएगा, प्रोडक्शन हमारे देश में ही होगा क्रूड ऑयल का। खैर हम देखते हैं रिकॉर्ड क्या है। तो हम 2014 से 2020 का हमारे पास डेटा है 6 साल का, तो हम उसी की तुलना 2014 से पहले 6 साल की करेंगे, 2008 से 2014 की तुलना बनाम 2014 से 2020। अब आप देखेंगे कच्चे तेल का जो इंपोर्ट है वो लगभग 28% बढ़ गया है, औसतन 28% बढ़ गया है अगर मैं हर साल का कंपैरिजन करके देखूं, है ना। लेकिन देश में प्रोडक्शन का क्या हुआ? अब खर्चा ज्यादा होगा, खपत ज्यादा होगी तो इंपोर्ट तो ज्यादा हो सकता है। देश में प्रोडक्शन का क्या हुआ? देश में प्रोडक्शन 1% घट गया है, यानी कुल हमारे देश में जितना कच्चा तेल का प्रोसेसिंग होता है जिसको थ्रूपुट कहा जाता है उसका 2008 से 14 के बीच लगभग 18% हमारे देश में प्रोड्यूस होता था, आज वो गिरकर 14.5% पर उतर आया है। यानी रिकॉर्ड और बुरा हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, ये तो पहली बात है। दूसरी बात है कि अगर आपको आप चाहते हैं कि देश में कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़े, है ना, तो आपको तो खर्चा करना पड़ेगा एक्सप्लोरेशन पर। आपकी कंपनी है ONGC सबसे बड़ी कंपनी है, आपको वहां पर पैसे डालने चाहिए। लेकिन ONGC का क्या हुआ? 2013-14 में ONGC ने एक्सप्लोरेशन मतलब कच्चा तेल कहां है उसको ढूंढ निकालने पर लगभग 11,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, ठीक है। मार्च 2019 मतलब 2018-19 का जो साल है उसमें वो गिरकर 6,000 करोड़ रुपए आ गया, यानी लगभग आधे पे आ गया है। ONGC के पास जो कैश रिजर्व था जिसको वो खर्च कर सकती थी कच्चा तेल निकालने के लिए, ढूंढने के लिए, वो बिल्कुल घट गया। क्यों? क्योंकि ONGC को दो कंपनियां खरीदनी पड़ी है, एक है गेल के शेयर्स खरीदने पड़े, दूसरा GSPC। दोनों को ओएनजीसी के कैश रिजर्व से खरीदा गया और किसका फायदा हुआ इससे? सरकार का जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है, विनिवेश का टारगेट है, उसको मीट करने के लिए ओएनजीसी, सब जानते हैं ओएनजीसी को यह करना पड़ा है, यानी ओएनजीसी के पास पैसे अब एक्सप्लोरेशन तेल ढूंढने के लिए, कच्चा तेल ढूंढने के लिए नहीं है। तो साफ यह है कि अगर सरकार सच में चाहती कि एक्सप्लोरेशन बढ़े तो वो खर्चा और बढ़ाती, लेकिन वो नहीं हुआ है। जितने भी ऑयल पीएसयू हैं, जितनी सरकारी कंपनियां हैं, उनका कुल खर्चा घटा है 2019-20 में 2013-14 के तुलना में।
2000-2001 में भारत पेट्रोलियम उत्पादों की खपत का 75% आयात करता था, 2016 से 19 के बीच 95% आयात करने लगा, इस वक्त अपनी खपत का 84% आयात करता है, यानी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में तो आयात बढ़ता ही रहा, कम नहीं हुआ। अभी हम एथेनॉल की भी बात करेंगे, लेकिन कुछ सवाल पहले आने से रुक नहीं पा रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो कम भी होते हैं, जब कम होते तब उस अनुपात में पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं कम होते, और जब माइनस में चले जाते हैं तब भी कम क्यों नहीं हुए? 2018 के अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत $84 प्रति बैरल हो गई थी। उस समय भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी। तब दिल्ली में पेट्रोल का दाम ₹84 प्रति लीटर हो गया था, जबकि मुंबई में ₹91.34। आज के दाम पर नजर डालिए, आज कच्चे तेल का दाम $61 प्रति बैरल है, उससे भी अधिक, यानी अक्टूबर 2018 से करीब $23 कम है, लेकिन फिर भी आज दिल्ली में पेट्रोल के दाम ₹89.54 हैं, जबकि मुंबई में ₹96, यानी अक्टूबर 2018 से ज्यादा। अगर कच्चे तेल के हिसाब से दाम तय होता तो आज भारत में लोगों को तेल सस्ते में मिल रहा होता। जब 2008 में कच्चे तेल का दाम $147 प्रति बैरल तक पहुंच गया, तब पेट्रोल ₹45 लीटर कैसे मिल रहा था, और आज जब $61 प्रति बैरल है तो पेट्रोल ₹100 तक कैसे बिक रहा है? पहले के लोग ज्यादा प्रतिभाशाली थे या आज के लोग ज्यादा प्रतिभाशाली हैं? फिर यह कौन बताएगा कि जब पिछले साल अप्रैल में कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भारत की जीडीपी की तरह माइनस में चली गई थी, तब भारत में पेट्रोल के दाम क्यों कम नहीं हुए बल्कि बढ़ी गए? अप्रैल 2020 में राजधानी दिल्ली में पेट्रोल ₹69.59 लीटर था, मुंबई में ₹76.31 लीटर।
पिछले साल दिल्ली में अगर मैं पेट्रोल भरवाता अपने टंकी में और आज उसका कंपैरिजन करूं तो लगभग 23-24% आज बढ़ गया, यानी कि अगर मेरे पेट्रोल का बिल ₹4,000 था, आज वो 5,000 के आसपास आ गया। ठीक है, इसका कारण क्या है? क्या इंटरनेशनल क्रूड का दाम बढ़ गया? जी नहीं, हम जो क्रूड खरीदते हैं, जिसको कच्चा तेल खरीदते हैं, जिसको इंडियन बास्केट कहा है, वो 1% घट गया है पिछले फरवरी की तुलना में, 1% उसका दाम घट गया है, फिर भी पेट्रोल और डीजल पर ज्यादा पैसे हम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य सरकारें हो, सरकारों ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया है। टैक्स बढ़ गया, लगभग ₹13 पिछले साल टैक्स बढ़ाया गया, सेंट्रल एक्साइज बढ़ाया गया है पेट्रोल पर, जो लगभग ₹20 था आज वो ₹33 के आसपास आ चुका है। और एक और चीज बड़ी बात है कि आप देखिए कि सरकार, पहले क्या होता था, जब इंटरनेशनल प्राइस बहुत ज्यादा होता था तो सरकारें क्या करती थी, सब्सिडी देती थी, और ये जो पेट्रोलियम सब्सिडी है आज चला गया क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस घट चुका है, वो सब्सिडी चला गया है। और उस सब्सिडी में लगभग, अगर मैं फिर से देखूं सब्सिडी, मैं 2014 से 2021-22 का कंपेयर कर रहा हूं, बजट का जो डेटा हमारे सामने है, और ये जो जितने साल है उसी का उतना ही पहले का भी कंपैरिजन करूंगा, तो 17% सब्सिडी घट गया है, यानी सरकार के हाथ में 17% सीधा पैसा ज्यादा आ रहा है। और आखिरी चीज जिसको कहा जाता है पेट्रोलियम सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, कि पेट्रोलियम जितने कंपनी है वो टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, फिर डिविडेंड वगैरह, ये सब मिलाकर कितना सरकार को देती है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 1,72,000 करोड़ के आसपास, 1.72 लाख करोड़ के आसपास 2014-15 में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो अब जाकर 3,33,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है 2019-20 में, 2019-20 में ये कॉन्ट्रीब्यूशन आप देख लीजिए, लगभग 94% कॉन्ट्रीब्यूशन इस सेक्टर का बढ़ गया सरकार के हाथ में। सरकार का जितना टोटल रेवेन्यू है वो भी अभी पेट्रोलियम सेक्टर से ज्यादा आता है 6 साल की पहले की मैं तुलना करूं तो उसकी तुलना में, यानी कि सरकार यहां से ज्यादा पैसे निकाल रही है, इसलिए हम दे रहे हैं। इसमें पुरानी देश सरकारों का कोई दायित्व नहीं है।
पेट्रोल पर केंद्र और राज्य 60% तक टैक्स लगाते हैं, डीजल पर 54% के करीब। एक साल के भीतर केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 9.98 रुपए से बढ़ाकर 32.98 रुपए कर दिए, 3 गुना से अधिक। इस तरह डीजल पर उत्पाद शुल्क 15.83 रुपए से बढ़ाकर 31.83 रुपए कर दिए। एक सरकारी वेबसाइट है पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, इसकी साइट से पता चलता है कि 2014-15 से पेट्रोलियम से सरकार के खाते में कितने पैसे पहुंचे हैं। तो 2014-15 में 3,32,620 करोड़, 2015-16 में 4,14,506 करोड़, 2016-17 में 5,24,945 करोड़, 2017-18 में 5,43,026 करोड़, 2018-19 में 5,75,632 करोड़, 2019-20 में 5,55,370 करोड़। कोविड के दौरान सरकार की कमाई काफी घटी है, लेकिन आप 2014-15 से 2019-20 के बीच कमाई देख सकते हैं कि करीब करीब दुगुनी, डेढ़ गुनी, दो गुनी हो चुकी है। क्यों पेट्रोल डीजल के टैक्स पर निर्भरता बढ़ती जा रही है? क्या इस वक्त सरकार के पास पैसे नहीं हैं? क्या इसलिए लोगों के पास जो भी पैसे हैं उसे सरकार निकाल लेने के फिराक में है? 22 जनवरी को इंडिया स्पेंड में रोहित इनानी ने एक लंबी रिपोर्ट की है जिसमें बताया है कि भारत की जीडीपी में घरेलू बचत का हिस्सा घटता जा रहा है। 2012 में 24% था जो 2018 में 17% हो गया। लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है, बचत से निकाल कर खा रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते चले जा रहे हैं। घरेलू बचत का स्तर 1991 के बराबर पहुंच गया है। ऐसा नहीं है कि सब दुखी है, पॉजिटिव न्यूज भी है जिससे पता चलता है कि कुछ तो अच्छा हो रहा है। जनवरी महीने में ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार तालाबंदी के दौरान, महामारी के दौरान भारत के 11 अरबपतियों की संपत्ति इतनी बढ़ गई कि वे अगले 10 साल तक मनरेगा का बजट उठा सकते हैं, सिर्फ 11 लोग। कम से कम 11 लोगों ने प्रतिभा के दम पर विकास किया है। इसी महामारी के दौरान 24% भारतीयों की एक महीने की आमदनी 3,000 रुपए से भी कम हो गई। 24% मतलब 32 करोड़ से अधिक भारतीय। गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़े हैं। इन सबके कारण आमदनी पर बहुत बुरा असर पड़ता जा रहा है।
पहले तो ज्यादा चक्कर लगा लेते थे तेल में, वो कमाई की दिक्कत होगी, अब 80 रुपए लीटर होगा तो 81 रुपए लीटर हो रहा है, तो महंगाई से चक्कर कम लग रहे हैं जी। तेल ज्यादा फूक रहा है, सवारी कम है इस टाइम।
गाड़ी किस्त बड़ी मुश्किल से भरा रही है, रोज के 200-250 दिन भर में हो रहा है, और कोई मेहनत करे तो क्या बनेंगे, उसमें कुछ नहीं मिल रहा है। पेट्रोल है तो महंगा ही महंगा हो जा रहा है, गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं निकल रहा।
घर में तो हम लोग को मंथली जितना पैसा आता है एडजस्ट ही नहीं हो पाता, क्योंकि अब इतना आना जाना पड़ता है कॉलेज एंड ऑल, तो एकदम से प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो
स्टूडेंट हैं
जी सर,
तो बहुत मुश्किल हो
रही है, बहुत मुश्किल है।
100 रुपए लीटर पेट्रोल हो चुका, और जैसे हम 500 रुपए कमाते थे तो उसमें 200 तो पेट्रोल लग जाता, 300 रुपए रोज कमा रहे हैं। फिर हम पहले 500 रुपए कमाते थे, अब 300 रुपए कमा रहे हैं।
क्या काम करते हैं आप?
मैम जोमेटो में काम करता हूँ, मैं डिलीवरी बॉय।
अच्छा जोमेटो में है, तो जोमेटो के सबसे ज्यादा, स्विगी और जोमेटो के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा उन पर असर पड़ा है। कहीं कहीं तो लोग बाइक छोड़ के साइकिल पे जा रहे हैं।
जी मैडम, साइकिल में करने लग गए क्योंकि उनको बेनिफिट साइकिल में लग रहा है। हाँ। क्योंकि बाइक से तो बहुत ज्यादा पेट्रोल लग रहा है। हाँ। इसलिए वो साइकिल से काम कर रहे हैं।
पेट्रोल डीजल के साथ गैस के सिलेंडर के दाम भी बढ़ रहे हैं। आप अपनी जेब कितना संभाल सकते हैं आप समझिए। नवंबर 2020 से लेकर अब तक गैस का सिलेंडर 175 रुपया महंगा हो चुका है। कई लोग कहते हैं कि विपक्ष आवाज नहीं उठाता, लेकिन दिखाया भी तो नहीं जाता। विपक्ष ने ना भी उठाए तो क्या आपको पता नहीं कि 175 रुपया महंगा हो चुका है? सरकार को खुद बताना चाहिए कि इसके कारण क्या हैं। नवंबर महीने तक यूपी के मोदी नगर में गैस का एक सिलेंडर 592 रुपए का आता था, एक गैस वाले ने बताया। 2 दिसंबर को 642 रुपए का हो गया और 15 दिसंबर को 692 का। उसके बाद 3 फरवरी को 25 रुपए की वृद्धि के बाद 717 रुपए का हो गया और फिर 14 फरवरी को 50 रुपए की वृद्धि के बाद 767 रुपए का हो गया। अलग अलग राज्यों शहरों में अलग अलग दाम होते हैं।
मेरे घर में तो कोई कमाने वाला भी नहीं है और सिलेंडर 800 रुपए का कर दिया है। कहाँ से तो कमा लेने के लिए लाभ है, कहाँ से कोई काम का चारा भी नहीं है। मेरे घर से तो आज कमाने वाला पति भी खत्म हो गया है, मेरे घर में कोई भी नहीं है कमाने वाला।
गैस की महंगाई से आपको दिक्कत हो रही है?
आपको हमको गैस की महंगाई से बहुत दिक्कत है, खाने पीने की भी महंगाई, आटे दाल की भी परेशानी है।
हर समय के बाद बीच में आप देखेंगे कि कुछ दिनों के लिए गैस और पेट्रोल काफी महंगे हो जाते हैं। पिछले साल फरवरी में गैस का सिलेंडर वैसे 858 रुपए था। क्या यह कोई पैटर्न है कि दो तीन महीना लगातार बढ़ाओ फिर कम कर दो ताकि लगे कि कुछ कम भी हो रहा है और फिर बढ़ा दो कुछ समय के बाद? जब तक लोगों का ध्यान जाए बीच में हिंदू मुस्लिम डिबेट भी लॉन्च कर दो। क्या वाकई में कम कमाई और आधी सैलरी से परेशान लोगों को इन सब बातों से तकलीफ नहीं है? वे विपक्ष का इंतजार कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लोग भी काफी बर्बाद हो रहे हैं। इस वक्त जब अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, किराया बढ़ने का या बढ़ाने का स्कोप भी कम है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लोग बहुत कम मार्जिन पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस सेक्टर से लाखों लोग बाहर हो रहे हैं या किए जा चुके हैं, उनका काम छिन चुका है।
ट्रांसपोर्टर खाली सिर्फ अगर अपनी लागत का ही हिसाब लगाए तो उसका, क्योंकि पूरे ट्रक की जो लागत आती है, जो माल भाड़े की, उसमें 65% योगदान जो है वो डीजल का होता है, क्योंकि डीजल की कॉस्टिंग 65% होती है। तो उसी अनुपात में, जिस अनुपात में सरकार रेट बढ़ाती है, अगर हम रेट बढ़ाते हैं तो वो महंगा तो होगा ही होगा और महंगाई बढ़ेगी। तो हमारी सरकार से पुरजोर अपील है कि टैक्सेस को कम करे।
राजस्थान के श्रीगंगानगर में सामान्य पेट्रोल 100 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। यहां पर पावर पेट्रोल 103 रुपए लीटर मिल रहा है। नॉर्मल डीजल 92 रुपए 42 पैसे लीटर मिल रहा है। ये तब है जब राजस्थान सरकार ने पेट्रोल और डीजल के वैट पर 2% की कटौती की है। श्रीगंगानगर में एचपी, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के पंपों पर पेट्रोल डीजल जयपुर व जोधपुर डिपो से आता है। वहां से यहां की दूरी 500 किलोमीटर से ज्यादा होने के कारण परिवहन किराया बढ़ जाता है। इससे अलग अलग शहर में कीमतों में भी अंतर देखने को मिलता है। पेट्रोल पंप संचालकों का दावा है कि रोजाना पंजाब से 20,000 लीटर पेट्रोल और डीजल लाकर लोग इलाके में बेच रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। इससे राज्य सरकार को हर महीने करीब 1.5 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। इधर जिला रसद विभाग के अफसरों का मानना है कि पेट्रोलियम एक्ट के तहत 2000 लीटर की छूट दी गई है, ऐसे में लोगों को इस कानून के तहत रोका भी नहीं जा सकता।
जो पेट्रोल पंप वाले उनको ये फर्क पड़ रहा है कि पंजाब में सस्ता होने से किसान और आमजन उधर मूव हो गया और पेट्रोल पंप सारे मतलब सूखे हो गए, कोई आ ही नहीं रहा यहाँ पे। जो पंप 25 से 30 हजार लीटर डेली सेल कर रहे थे वो 1000 लीटर पे आ चुके हैं और 4 पेट्रोल पंप पूर्व में बंद हो चुके हैं, 10 पेट्रोल पंप बिक चुके हैं और 10 पेट्रोल पंप बिकने वाले हैं। और अगर लगातार यही चलता रहा, सरकारों ने हमारी नहीं सुनी, राज्य सरकार ने वैट नहीं कम किया, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम नहीं की, तो मैं ये मानता हूँ कि 1 साल में 75% पेट्रोल पंप राजस्थान गंगानगर जिले के बंद हो जाएंगे।
ये राजस्थान गवर्नमेंट का ही नुकसान है जो हम लोग वहां से डील करवाते हैं। करीबन डीजल जो बसें हैं पंजाब का ही ले रही है, फिर भी जो डिफरेंस है राजस्थान और पंजाब 10 रुपए लीटर का डिफरेंस है। जो हमसे यहाँ वाला डीजल हमसे नहीं बनवाया जा रहा, यहाँ वाला क्या तो पंजाब का बनवाना मुश्किल हो गया जी। इतनी कीमतें बढ़ चुकी हैं कि हमारी बसें खड़ी होने के घर पर है। अगर यही हाल रहा तो और मेरे ख्याल में 1 साल में हमारी बसें घर पर खड़ी हो जाएंगी।
आज किसान आंदोलन ने कई राज्यों में रेलगाड़ियों का रास्ता रोका। बहादुरगढ़ में फंसे यात्रियों को फल और पानी भी दिया गया, तो अंबाला और पटना के स्टेशन पर किसानों ने प्रदर्शन किया। पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और भी कई जगहों पर रेलगाड़ियां रोकी गईं।
देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों ने 4 घंटे के लिए ट्रेन के पहिए रोके रखे। 12 बजे से किसानों ने रेलवे स्टेशन और पटरियों की तरफ जब कूच किया तो हापुड़ में पुलिस ने पहले रोकने की कोशिश की, लेकिन हल्की धक्का मुक्की के बावजूद प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। यात्रियों को ज्यादा असुविधा न हो इसके लिए दिल्ली और गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन को चक्का जाम से दूर रखा गया।
आम ये माफी मांग रहे हो भाई यात्रियों को, किसानों की तरफ से कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम इसलिए खाने का फल फ्रूट चाय पानी बिस्कुट जो भी खाद्य सामग्री है हम किसानों की तरफ से फ्री देने जा रहे हैं।
हम दो और हमारे दो के कहे में मत ना आवे, ये अडानी और अंबानी का देश नहीं है, ये 135 करोड़ जनता का देश है, ये एक या दो आदमी का देश नहीं है। आपको हमने चुना है, आपने हम नहीं चुने हैं।
हरियाणा में महिलाओं ने भी रेल रोको आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जिंद में हजारों की तादाद में महिला रेल की पटरियों पर धरने पर बैठी। उधर बहादुरगढ़ में किसानों ने अपने हाथ ऊपर उठाए पटरी पर धरना दिया, बताते हुए कि वो निहत्थे हैं और शांति से आंदोलन कर रहे हैं। बहादुरगढ़ से मोदी नगर के रेलवे स्टेशन तक पर किसानों ने यात्रियों से परेशानी के लिए माफी मांगी।
दिक्कत है, टाइम से पहुंच जाते। अच्छा। और हम तो मेरठ जाना, हरिद्वार जाना है लोगों को और जाना है। इस तरह रोक के आम जनता को परेशानी कर रहे हैं।
किसानों ने कुछ खिलाया बच्चों को, पानी वानी दिया कि नहीं?
हाँ जी, पानी भी मिला है, संतरे भी मिले हैं। सब लोग परेशान हैं, सुबह से बैठे हुए हैं। वो अपनी कह रहे हैं, सरकार अपनी चला रही है, अब किसकी कहे किसकी ना कहे क्या बता सकते हैं।
किसानों के रेल रोको अभियान के चलते 20 से ज्यादा ट्रेनें आंशिक तौर पर प्रभावित हुईं, लेकिन कहीं से भी कोई तोड़फोड़ जैसी सूचना नहीं आई। यही नहीं, कई जगह पर किसान धरना खत्म करने के बाद ट्रेन की पटरियों को साफ करके भी गए।
हम इस वक्त बहादुरगढ़ में और आप देखिए किसान अपना यहां पर धरना खत्म कर रहे हैं। जो भी कूड़ा फैला है उसे भी देखिए रेलवे ट्रैक से वो इस तरीके से साफ करके हटा रहे हैं। इनका कहना है कि किसान जो है, ये जो किसान है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपना धरना किया और इस वक्त वो खुद साफ सफाई भी कर रहे हैं ताकि कल को कोई यहाँ आकर ये ना कह दे किसानों ने गंदगी।
करीब 15 से 20 जगहों पे जो है वो ट्रेनों को रोका गया है, लेकिन सारा कुछ शांतिपूर्ण है।
धरना 12 बजे से शुरू हुआ और 4 बजते ही खत्म हुआ। दिन में किसानों ने कई जगह पुलिस को पानी मट्ठा और मिठाई खिलाई, तो धरना खत्म होने पर कई जगह पुलिस ने भी शांति बनाए रखने के लिए किसानों को फूल दिए।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सरकार और किसान नेताओं के बीच गतिरोध अभी भी बना हुआ है, लेकिन अगर सरकार और किसानों के बीच बातचीत का सिलसिला इसी तरह टूटा रहा तो आने वाले वक्त में इसी तरह के धरने प्रदर्शन और रेल रोकने का जो सिलसिला है वो चलता हुआ मिल सकता है। मोदी नगर से सचिन गुप्ता, सौरभ शुक्ला, सरस शर्मा, परिमल कुमार और अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
कमाल खान उन्नाव गए हैं, वहां 13 और 16 साल की दो बहनों की लाश खेत में मिली है। उनके साथ 17 साल की बहन भी गंभीर हालत में पाई गई है। तीनों दलित हैं। भाई का कहना है कि तीनों के हाथ पांव बांध दिए गए थे। हर दिन किसी न किसी राज्य से ऐसी खबरें आती हैं। यूपी में हाथरस की घटना के बाद भी कुछ बदला नहीं। सोचिए, आप ऐसे भारत में रहते हैं जहां तीन बहनों को इस तरह से मार दिया जाता है। ये मैं ग्लोबली नहीं कह रहा, आंतरिक रूप से आपको कह रहा हूं। प्रधानमंत्री ने तो 2017 के विधानसभा चुनाव में भी कहा था कि क्या कारण है। क्या हम अभी तक उन कारणों पर भी विचार नहीं कर पाए कि क्या कारण है?
जिस राज्य में आपके रहते हुए आपके परिवार में इतनी महिलाओं को आपने नेता बनाया है, उसके बावजूद भी क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण है?
उत्तर प्रदेश में लगता है सिर्फ शहरों के नाम बदल जाते हैं। हाथरस के बाद अब उन्नाव है। तीन बहनों को हाथ पांव बांधकर खेत में फेंक दिया गया, दो की मौत हो गई। एक साथ तीन बहनों के साथ ऐसा करने वाले कितने लोग रहे होंगे? कारण से लेकर मंजर तक क्या इस बार भी हाथरस केस की तरह पुलिस के उन दावों पर निर्भर रहना होगा जो टिक ही नहीं सके, जिसके कारण पुलिस की खासी आलोचना हुई? 3 दलित लड़कियों के साथ ऐसा किया गया है। कमाल खान की रिपोर्ट।
उन्नाव के बाबूराहा गांव में सरसों के खेतों के बीच में ये वो जगह है जहां पे तीनों बच्चियां यहां पे बेसुध मिली थीं। दो लड़कियां अस्पताल जाने पे पता चला कि वो मर चुकी हैं और एक बच्ची जो बहुत गंभीर हालत में बीमार है कानपुर में भर्ती है। ये लड़कियां चारे के लिए अपने घर से निकली थीं तकरीबन 3 बजे के करीब। तकरीबन 6 बजे के करीब जब वो अपने घर नहीं पहुंची तो उनके परिवार के लोग उनको ढूंढने के लिए आए और ढूंढते ढूंढते जब वो यहाँ पहुंचे हैं तो इस जगह पे तीनों लड़कियां उनको मिली हैं। ये जगह जो अभी थोड़ी खाली हो गई है ये लोगों के कदमों से रौंदने की वजह से खाली हो गई है। तीनों बच्चियां तीसरे पहर करीब 3 बजे घर से चारा काटने खेत पे गईं। घर वाले कहते हैं कि वे जब कई घंटे तक वापस नहीं आईं तो वे लोग परेशान हुए और उनकी ढूंढ शुरू हुई।
वो गए देखने के लिए तो मतलब कि खेत में सभी लोग पूछने लगे कैसे क्या हुआ। सभी लोग मतलब ढूंढाने लगे तो वहीं पर से घुराया भी काफी, पुकारा भी, आवाज भी लगाई तो आवाज कहीं से नहीं सुनाई मिली। वो बोलती ही नहीं, मतलब कोई ने किसी ने बोला ही नहीं तो वो सब लोग खेत में पिल कर देखने लगे। खेत खेत देखने लगे तो हमारी जो सरसों है हमारा जो खेत है उसी खेत में मिली हुई थी।
तीनों बच्चियों को जब इलाके के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि 2 मर चुकी हैं और 1 की हालत नाजुक है। दोनों लड़कियों का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों की टीम ने किया। लड़कियों के जिस्म पे चोट के निशान तो नहीं मिले हैं लेकिन उनके पेट में जहर मिला है। उनका विसरा जांच के लिए भेजा गया है।
देखिए इंक्वेस्ट रिपोर्ट में भी पॉइजनिंग के सिम्टम पाए गए थे जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम से भी हुई है। विसरा प्रिजर्व किया गया है और फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। घटनास्थल पर जो है लाही के खेत में बहुत सारा फ्रॉथ पाया गया था जो अमूमन पॉइजनिंग के केस में ही पाया जाता है। शरीर पर कोई जहरा या कुंभ चोट नहीं है।
3 नाबालिग लड़कियों की इस तरह मौत की खबर से गांव में लोगों का हुजूम लग गया। बड़ी तादाद में तमाशबीन के अलावा राजनीतिक दल के लोग भी पहुंचने लगे। पुलिस का कहना है कि जहर से बच्चियों की मौत 3 तरह से हो सकती है। एक तो ये कि उन्होंने धोखे से जहर खा लिया हो, दूसरा ये कि उन्होंने खुदकुशी करने को जहर खाया हो और तीसरे उन्हें किसी ने जहर दिया हो। कुछ लोग इसमें ऑनर किलिंग का भी शक जता रहे हैं।
हम सारे एंगल्स लेके चल रहे हैं, चाहे जितना भी इम्प्रोबेबल एंगल क्यों ना हो हम सारे एंगल्स को लेके चल रहे हैं। हमारे इन्वेस्टिगेशन में एविडेंशरी वैल्यू पर जो भी हाइपोथेसिस सटीक बैठेगी हम उधर ही जाएंगे।
दोनों बच्चियों के शव अंधेरा होने के बाद गांव पहुंचे। मान्यताओं के मुताबिक क्योंकि रात में अंतिम संस्कार नहीं होता इसलिए रात में उनका अंतिम संस्कार नहीं हो सका। उन्नाव में गौरव शुक्ला और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।